रोम दृष्टि निर्धारित करता है संख्या 8, रेत की नींव, लाउदी किया ये एडवेंटवाद में भविष्यवाणी के सत्य का अस्वीकार।
पिछले लेख में हमने यीशु के निम्नलिखित वचनों का उल्लेख किया था।
झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो तुम्हारे पास भेड़ की खाल ओढ़कर आते हैं, पर भीतर से वे खूंखार भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। क्या लोग कांटों से अंगूर तोड़ते हैं या ऊंट कटारों से अंजीर? इसी प्रकार हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु बिगड़ा हुआ पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न ही बिगड़ा हुआ पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो कोई पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटकर आग में डाला जाता है। इसलिए तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। जो जो मुझसे कहता है, हे प्रभु, वो सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा को पूरा करता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ हे अधर्म करने वालों। इसलिए जो कोई मेरे ये वचन सुनता है और उन पर चलता है, मैं उसे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराऊंगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश हुई, बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर पर आकर टकराईं, तो भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। और जो कोई मेरे ये वचन सुनता है पर उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहराया जाएगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और बारिश हुई, बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर पर आकर टकराईं, और वो गिर गया और उसका पतन बहुत भारी था। मत्ती 7:15-27।
1863 का विद्रोह लाओदीकेया सेवंथ डे एडवेंटिज्म द्वारा रेत पर झूठी नींव बनाने की शुरुआत को चिन्हित करता है। रेत बहुलतावाद के शैतानी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, जो परमस सत्य की चट्टान के विपरीत है। परमस सत्य डिराइव्स दो साक्षियों पर स्थापित है, और हबाकॉन्स के दो पवचार्टोन्स पर प्रदर्शित दे सच जायंथ जिन्हें एडवेंटिज्म ने डी सिलग्राई की दी है, बाइबल से उत्पन्न और भविष्यवाणी की आत्मा द्वारा पुष्टि की गई है। वे सच्चाया परम है।
शत्रु हमारे भाइयों और बहनों के मनों को इन अंतिम दिनों में दृढ़ रहने के लिए एक प्रजा को तैयार करने के कार्य से भटकाने का प्रयत्न कर रहा है। उसके कुतर्कों का उद्देश्य मनों को वर्तमान समय के संकटों और कर्तव्यों से दूर ले जाना है। वे उस प्रकाश को बहुत कम मूल्य का समझते हैं जिसे मसीह स्वर्ग से अपने लोगों के लिए यूहन्ना को देने आए थे। वे सिखाते हैं कि जो घटनाएं हमारे ठीक सामने हैं, वे इतना महत्व नहीं रखती कि उन्हें विशेष ध्यान दिया जाए। वे स्वर्गीय मूल्य की सच्चाई को निष्फल कर देते हैं और परमेश्वर की प्रजा को उनके अतीत के अनुभव से वंचित कर देते हैं और उसके स्थान पर उन्हें झूठा विज्ञान दे देते हैं। यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े हो और देखो, और पुराने पथों के विषय में पूछो कि अच्छा मार्ग कौन सा है, और उसी पर चलो। Jeremiah 6:30।
हमारे विश्वास की नींवों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कोई न करे। वे नींवें जो हमारे कार्य के आरंभ में वचन के प्रार्थनापूर्वक अध्ययन और प्रकाशन द्वारा रखी गई थीं, इन नींवों पर हम 50 से अधिक वर्षों से निर्माण करते आ रहे हैं। लोग ये मान सकते हैं कि उन्हें नई राह मिल गई है, कि वे पहले से रखी गई नींव से भी अधिक मजबूत नींव रख सकते हैं, पर यह एक बड़ा धोखा है। जो नींव रखी जा चुकी है उसके सिवा कोई और नींव कोई मनुष्य नहीं रख सकता। इस सारे वर्षों कर भी एकदम धायित में बहुतों ने नया विश्वास खड़ा करने, नए सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न किया है, पर उनकी इमारत कितने समय तक खड़ी रही, वो शीघ्र ही गिर गई क्योंकि वो चट्टान पर स्थापित नहीं थी। गवाहियां खंड 8:56-9:9।
जब 11 सितम्बर 2001 का आगमन हुआ तो पवित्र आत्मा की वर्षा भी हुई।
अंतिम वर्षा परमेश्वर के लोगों पर बरसेगी। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरेगा और संपूर्ण पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो जाएगी। रिव्यू एंड हेराल्ड 21 अप्रैल 1891।
जब न्यूयॉर्क शहर की विशाल इमारतें ईश्वर के एक स्पर्श से ढहा दी गई, तब अंतिम वर्षा की फुहारें पड़ने लगीं। जब 11 सितम्बर 2001 आ पहुँ तो पापसी सिद्धांतों के बाढ़ फाटक खोल दिए गए।
इस समय जब अधर्म प्रबल है,
वे प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं जिन्होंने प्रभु यों कहता है को अस्वीकार कर दिया है एक विचित्र स्थिति पर आ पहुंचेंगी। वे दुनियावी बन जाएंगी। परमेश्वर से अपने अलगाव में वे असत्य और परमेश्वर से धर्मत्याग को राष्ट्र का कानून बनाने का प्रयास करेंगी। वे देश के शासकों पर प्रभाव डालेंगी कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो पाप के मनुष्य का खोया हुआ प्रभुत्व पुनःस्थापित करे, जो परमेश्वर के मंदिर में बैठता है और अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। रोमन कैथोलिक सिद्धांतों को राज्य के संरक्षण में ले लिया जाएगा, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन का नियम नहीं बनाया है, वे अब बाइबल के सत्य के प्रतिवाद को सहन नहीं करेंगे। रिव्यू एंड हेरल्ड, 21 दिसंबर 1897।
पैट्री एक्ट रोमन कैथोलिक सिद्धांतों की रक्षा की शुरुआत को चिह्नित करता है, जो क्रमिक रूप से शीघ्र आने वाले रविवार कानून की ओर ले जाती है। 11 सितंबर 2001 को तीसरी विपत्ति के इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने वाली चारों हवाएं बहने लगी।
देवदूत चारों हवाओं को थामे हुए हैं, जिन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में दर्शाया गया है, जो बंधन तोड़कर पूरी पृथ्वी पर दौड़ पड़ने को आतुर है और अपने मार्ग में विनाश और मृत्यु लेकर चलता है। क्या हम अनंत संसार के कगार पर ही सोए रहेंगे? क्या हम सुस्त, ठंडे और मृतवत रहेंगे? ओ काश हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा और श्वास उसके लोगों में फूंकी जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जीवित हो जाएं। हमें ये देखना चाहिए कि मार्ग संकीर्ण है और द्वार तंग है, परंतु जैसे ही हम उस तंग द्वार से गुजरते हैं, उसकी विशालता की कोई सीमा नहीं रहती। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेज, खंड 20, 110।
वर्षा, पवन और बाढ़ 11 सितंबर 2001 को आए और लाओदीकियाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की परीक्षा वैसे ही ली गई जैसे मसीह के बपतिस्मा के समय यहूदियों की, और जैसे 11 अगस्त 1840 से प्रोटेस्टेंटों की ली गई। उस समय से लेकर 18 जुलाई 2020 की विद्रोही भविष्यवाणी तक लाओदीकियाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों का घर धीरे धीरे गिरता गया, ठीक उतनी ही निश्चितता के साथ जैसे क्रूस से पहले यहूदियों के मंदिर को उजाड़ घोषित किया गया था, और जैसे 19 अप्रैल 1824 की पहली निराशा के समय प्रोटेस्टेंट धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट वाद में परिवर्तित हो गए। तीसरे स्वर्गदूत का लाओडीकियाई आंदोलन तब अपने अंतिम परीक्षण की प्रक्रिया में प्रवेश कर गया और 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुए परीक्षण की भांति कुंवारी कन्याओं को पुराने मार्गों पर लौटने के लिए बुलाया गया, जो केवल पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के मिल्रवादी आंदोलन के ही नहीं बल्कि तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन के भी आधारभूत सत्य थे। प्रबल भ्रम के संदर्भ में उन मौलिक सत्यों के अस्वीकार का प्रतीक दूसरा थिस्सलुनीकियों में पौलुस द्वारा लिखा गया संदेश है। उस संदेश का प्रतीक दानियेल की पुस्तक में प्रतिदिन है, क्योंकि थिस्सलुनीकियों के उसी खंड में विलियम मिलर ने समझा कि दानियेल की पुस्तक का प्रतिदिन मूर्ति पूजक रोम का प्रतिनिधित्व करता था। दानियेल की पुस्तक में द डेली की परिभाषा पर चर्चा करने वाली पुस्तकें लिखी गई हैं। उनमें से अधिकांश त्रुटिपूर्ण हैं, फिर भी यदि आप किसी ऐसे एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्री का लेख देखना चाहें जो इसे सही रूप में प्रस्तुत करता है, तो आप जॉन डब्ल्यू पीटर्स द्वारा लिखित द मिस्ट्री ऑफ द डेली ढूंढ सकते हैं। मेरा इस लेख में द डेली के उस पहलू पर चर्चा करने का इरादा नहीं है। ऐसी अन्य पुस्तकें भी हैं जो उस कौन, क्या और क्यों का इतिहास प्रस्तुत करती है, जिसके परिणाम स्वरूप द डेली का गलत दृष्टिकोण अंततः लाओदीकियन सेवेंथ डे एडवेंटिज्म के भीतर स्थापित हुआ। द डेली के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द की परिभाषा और द डेली के मूलभूत सत्य के विरुद्ध 1901 में पूरी गंभीरता से शुरू हुआ विद्रोह का इतिहास हबक्कूक की तालिकाओं में और दानियेल की पुस्तक पर हाल के लेखों में बार बार प्रतिपादित किया गया है। मैं इस लेख में द डेली पर अपनी चर्चा को रोम के प्रतीक के अस्वीकार किए जाने से संबंधित भविष्यवाणी संबंधी विशेषताओं पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। जो कोई भी एलन व्हाइट की रचनाओं के प्राधिकार को सचमुच स्वीकार करते हैं, उन्हें बस निम्नलिखित पढ़ना है ताकि वे जान सकें कि द डेली की सही समझ क्या है।
तब मैंने डेली के संबंध में देखा कि सैक्रिफाइस शब्द मनुष्य की बुद्धि से जोड़ा गया था और मूल पाठ का हिस्सा नहीं है, और ये कि प्रभु ने उसकी सही समझ उन लोगों को दी जिन्होंने न्याय के समय की पुकार दी। जब 1814 से पहले एकता विद्यमान थी तो लगभग सभी डेली की सही समझ पर एकमत थे, परंतु 1814 के बाद भ्रम के बीच अन्य विचारों को स्वीकार कर लिया गया है और परिणाम स्वरूप अंधकार और भ्रम छा गया है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 1 नवंबर 1850।
विलियम मिलर की द डेली एक्चनरिजिक के बारे में समझ को अस्वीकार करना एलन व्हाइट की रचनाओं के प्राधिकार को एक साथ अस्वीकार करना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु ने उसका सही दृष्टिकोण उन लोगों को दिया जिन्होंने न्याय की घड़ी की पुकार दी। उन्हें ये भी दिखाया गया कि द डेली के अन्य मत अंधकार और भ्रम उत्पन्न करते थे जो मसीह के गुग नहीं है। मिलर ने जब दूसरी थिसलुनीकियों का अध्ययन किया तब उन्होंने द डेली को मूर्ति पूजक रोम के रूप में पहचाना।
मैं आगे पढ़ता गया और दानियल को छोड़ किसी और स्थान में मुझे वो नित्य नहीं मिला। तब मैंने एक कंकॉर्डेंस की सहायता से वे शब्द लिए जो उससे जुड़े हुए थे, हटा देना, वो नित्य को हटा देगा, उस समय से जब नित्य हटा दिया जाएगा आदि। मैं पढ़ता गया और सोचा कि मुझे इस पाठ पर कोई प्रकाश न मिलेगा। अंततः मैं 2 थिसलुनीकियों 2:7-8 पर पहुंचा, क्योंकि अधर्म का भेद तो अभी से ही काम कर रहा है, केवल जो अब रोकता है वही तब तक रोके रहेगा जब तक वो बीच से हटाया न जाए, और तब वो दुष्ट प्रकट होगा आदि। और जब मैं उस पाठ पर पहुंचा, ओह, सत्य कितना स्पष्ट और महिमा में प्रतीत हुआ, यही है, यही नित्य है। तो अब पौलुस का जो अब रोकता है या जो बाधा देता है से क्या मतलब है? पाप का मनुष्य और दुष्ट से पापाई धर्म ही अभिप्रेत है। तो ऐसा क्या है जो पापाई धर्म के प्रकट होने में बाधा देता है? दरअसल वो मूर्ति पूजा, तो फिर नित्य का अर्थ मूर्ति पूजा ही होना चाहिए। विलियम मिलर, 2nd एडवेंट, मैनुअल, पृष्ठ 86, एडवेंट रिव्यू एंड सब्बात हेराल्ड, 6 जनवरी 1893।
अंततः लाओदिकियाई एडवेंटवाद ने उस सही समझ को एक तरफ रख दिया जो मिलर और उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने न्याय घड़ी की पुकार दी, और उसकी जगह पतित प्रोटेस्टेंटवाद की इस गलत धारणा को स्वीकार कर लिया कि द डेली मसीह की पवित्र स्थान सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझ कई मायनों में बेतुकी है और केवल गलत होने से भी आगे बढ़कर ये दावा करती है कि एक शैतानी प्रतीक मसीह का प्रतीक है।
इस प्रकार यद्यपि अजगर मुख्यतः शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, वो गौण अर्थ में मूर्ति पूजक रोम का प्रतीक है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी, 439।
मिलर ने दैनिक की पहचान मूर्ति पूजक रोम अर्थात अजगर के रूप में की, परंतु लाओदिकियाई एडवेंटिज्म ने पतनशील प्रोटेस्टेंटवाद से ये धारणा ले ली कि वो मसीह की स्वर्गीय पवित्र स्थान सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। दैनिक को मूर्ति पूजक रोम मानने की मिलर की पहचान का अस्वीकार उस सत्य के अस्वीकार का प्रतिनिधित्व करता है जो उन दोनों पवित्र चार्टों पर प्रदर्शित है जो हबक्कूक अध्याय 2 की पूर्ति थे। इस प्रकार ये एक मूलभूत सत्य का अस्वीकार है, ठीक वैसे ही जैसे लैव्यो व्यवस्था अध्याय 26 के 7 बार का अस्वीकार था। ये सत्य अस्वीकार करना कि द डेली मूर्ति पूजक रोम का प्रतिनिधित्व करता है एडवेंटिज्म की नींवों और भविष्यवाणी की आत्मा के अधिकार को अस्वीकार करना है। शैतान के किसी प्रतीक को मसीह के प्रतीक के रूप में ठहराना मसीह के कार्य को शैतान के कार्य के रूप में ठहराने के समान है।
मसीह को अस्वीकार करके यहूदी लोगों ने अक्षम्य पाप किया और दया के निमंत्रण को ठुकराकर हम भी वही भूल कर सकते हैं। जब हम उसके नियुक्त दूतों की बात सुनने से इनकार करते हैं और उसके बजाय शैतान के प्रतिनिधियों की सुनते हैं जो आत्मा को मसीह से दूर खींच ले जाएं, तब हम जीवन के प्रधान का अपमान करते हैं और उसे शैतान की सभा तथा समस्त स्वर्गीय जगत के सामने लज्जित करते हैं। जब तक कोई ऐसा करता रहता है उसे न आशा मिलती है न क्षमा, और अंततः वो परमेश्वर से मेल मिलाप की सारी अभिलाषा खो देगा। युगों की अभिलाषा, 305।
जब लाओदिकियाई एडवेंटिज्म ने द डेली और द 7 टाइम्स की मूलभूत समझ को अस्वीकार किया तब उन्होंने न केवल भविष्यवाणी की आत्मा के अधिकार और नींवों को अस्वीकार किया बल्कि विलियम मिलर के कार्य को भी अस्वीकार कर दिया जिन्हें अपनी समझ तक पहुँचने के लिए स्वर्गदूत गैब्रियल और अन्य स्वर्गदूतों ने मार्गदर्शन दिया था।
परमेश्वर ने अपना दूत भेजा कि वो एक ऐसे किसान के हृदय पर प्रभाव डाले जो बाइबल पर विश्वास नहीं करता था और उसे भविष्यवाणियों की खोज करने के लिए प्रेरित करे। परमेश्वर के दूत बार बार उस चुने हुए व्यक्ति के पास आए ताकि उसके मन का मार्गदर्शन करे और उन भविष्यवाणियों को उसकी समझ के लिए खोल दे जो परमेश्वर की प्रजा के लिए सदा से अस्पष्ट रही थीं। सत्य की श्रृंखला की पहली कड़ी उसे दी गई और वो एक के बाद एक कड़ी खोजता हुआ आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के वचन को आश्चर्य और प्रशंसा के साथ निहारने लगा। उसने वहाँ सत्य की एक पूर्ण श्रृंखला देखी। वो वचन, जिसे वो अब तक देव प्रेरित नहीं मानता था, अब अपनी शोभा और महिमा सहित उसकी दृष्टि के सामने खुल गया। उसने देखा कि शास्त्र का एक भाग दूसरे की व्याख्या करता है और जब कोई पद उसकी समझ में नहीं आता था तो वचन के किसी अन्य भाग में उसे उसका स्पष्टीकरण मिल जाता था। वो परमेश्वर के पवित्र वचन को हर्ष तथा अत्यंत आदर और भाई भक्ति के साथ मानने लगा। अर्ली राइटिंग्स 2-300।
उसका स्वर्गदूत एक ऐसा वाक्यांश है जिसका तात्पर्य स्वर्गदूत गैब्रियल से है।
स्वर्गदूत के ये शब्द, मैं गैब्रियल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, ये दिखाते हैं कि उसे स्वर्गीय दरबारों में उच्च सम्मान का स्थान प्राप्त है। जब वो दानियेल के लिए संदेश लेकर आया तो उसने कहा, इन बातों में मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं सिवाय तुम्हारे प्रधान मीकाएल मसीह के। दानियेल 10:21। गैब्रियल के विषय में उद्धारकर्ता प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि उसने अपने दूत के द्वारा उसे अपने दास यूहन्ना के पास भेजकर प्रकट किया। प्रकाशित वाक्य 1:10, द डिजायर ऑफ एजेस 99।
किसी शैतानी प्रतीक को मसीह के प्रतीक के रूप में पहचानना न केवल अक्षम्य पाप के समानांतर है, बल्कि अक्षम्य पाप मसीह द्वारा भेजे गए दूतों को अस्वीकार करने से भी जुड़ा हुआ है। द डेली तब अक्षम्य पाप का प्रतीक बन जाता है और जब ये समझा जाता है कि चुना हुआ विलियम मिलर को उस सत्य की सही समझ तक पहुंचाया गया था और जब उसके पश्चात उसे अस्वीकार कर दिया गया, तो ये सीधे थिस्सलुनीकियों को दूसरी पत्री में मेल खाता है, जो वही शास्त्र खंड है जहां मिलर ने अपनी खोज की थी। उस सत्य को अस्वीकार करना सत्य से प्रेम न करने का प्रमाण है और वो विद्रोह पवित्र आत्मा को हटाए जाने तथा शैतान की अपवित्र आत्मा के सौंपे जाने का कारण बनता है, जिसे पौलुस प्रबल भ्रम के रूप में पहचानते हैं। जैसे तेरे लोगों के लुटेरे जो दर्शन को स्थापित करते हैं, वैसे ही नित्य मूर्ति पूजक रोम का प्रतीक है। दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्र के संदर्भ में पौलुस सिखाते हैं कि दूसरे अध्याय के संदेश का अस्वीकार इस बात का प्रमाण है कि जो ऐसा करते हैं वे सत्य से प्रेम नहीं करते, क्योंकि वे उस अध्याय में प्रस्तुत सत्य से प्रेम नहीं करते, इसलिए उन्हें प्रबल भ्रम प्राप्त होता है। सभी भविष्यवक्ता अंतिम दिनों के विषय में बोल रहे हैं और इस लेख के पूर्ववर्ती प्रेरित अंश ये दर्शाते हैं कि पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के दौरान जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते उन पर प्रबल भ्रम आ जाता है। एक वर्ग तेल प्राप्त कर रहा है और दूसरा वर्ग प्रबल भ्रम प्राप्त कर रहा है। इतिहास के उस काल में पवित्र आत्मा उंडेला जाता है जब उन लोगों से इसे हटाया जा रहा होता है जो सील किए जाने की अवधि के दो परीक्षण कालों में 11 सितंबर 2001 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक प्रकट की जाने वाली ज्ञान की वृद्धि को अस्वीकार करते हैं। पूर्ववर्ती अंश की पुनरावृत्ति।
अंतिम दिनों की ओर दृष्टि डालते हुए वही अनंत शक्ति उन लोगों के विषय में ये घोषणा करती है जिन्होंने सत्य के प्रेम को स्वीकार नहीं किया कि वे उद्धार पाएं। इसी कारण परमेश्वर उन्हें प्रबल भ्रांति भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, ताकि वे सब दंडनीय ठहरें जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया परंतु अधर्म में आनंद लेते थे। जब वे उसके वचन की शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा को हटा लेता है और उन्हें उन छलों के हवाले कर देता है जिन्हें वे प्रेम करते हैं। प्रारंभिक लेखन 6।
पंक्ति पर पंक्ति डैनियल सिखाते हैं कि अंतिम दिनों में तेरे लोगों के लुटेरे रोम का प्रतीक ही दर्शन को स्थापित करते हैं। लुटेरों को द डली के रूप में भी दर्शाया गया है। सोलोमन सिखाते हैं कि अंतिम दिनों में जिनके पास दर्शन नहीं है वे नाश होते हैं, जो कि नग्न होना है, नग्न कर दिए जाना लाओदीकियन होना है, और लाओदीकियन एक मूर्ख कुमारी है।
मूर्ख कुमारियों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कलीसिया की अवस्था को लाओदीकियाई अवस्था भी कहा जाता है। रिव्यू एंड हेरल्ड, 19 अगस्त 1890।
जब आधी रात की पुकार का संदेश आता है, तब मूर्ख कुवारी होना वही प्रकट करना है जिसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पहरो में तेरी नग्नता की लज्जा के रूप में दर्ज किया है। छठी विपत्ति में यूहन्ना की चेतावनी ड्रैगन, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के त्रिपक्षीय गठबंधन से संबंधित है जो 1999 से दुनिया को हरमगिदोन की ओर ले जा रहे हैं।
थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री में पौलुस का संदेश केवल इस बात के बारे में नहीं है कि मूर्ति पूजक रोम को दानियेल ने नित्य के रूप में दर्शाया है, बल्कि ये अध्याय मूटालर रोम को और पापल रोम के बीच के संबंध पर बल देता है। मूर्ति पूजक रोम ने अधर्म का मनुष्य को 538 में पृथ्वी के सिंहासन पर आने से रोके रखा, विथहोल्ड इट। जब मूर्ति पूजक रोम हट गया, तब अधर्म का भेद वह अधर्मी जो रोम का पोप है प्रकट हुआ। इस अध्याय में पौलुस मूर्ति पूजक और पापल रोम के बीच एक विशिष्ट भविष्यवाणी संबंध को चिह्नित करता है। इस अध्याय की शिक्षा को अस्वीकार करना सत्य को अस्वीकार करना है और प्रबल भ्रम को स्वीकार करना है।
किसी प्रकार तुम्हें कोई धोखा न दे, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले धर्म त्याग न हो ले और अधर्म का मनुष्य विनाश का पुत्र प्रकट न किया जाए, जो विरोध करता है और जो कुछ परमेश्वर कहलाता है या जिसकी उपासना होती है उन सब से अपने आप को बढ़ाता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। क्या तुम स्मरण नहीं करते कि जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुमसे ये बातें कहता था, और अब तुम जानते हो कि कौन उसे रोक रहा है ताकि वो अपने समय पर प्रकट किया जाए, क्योंकि अधर्म का भेद तो अब ही से कार्य कर रहा है। केवल जो अभी रोक रहा है वो तब तक रोके रहेगा जब तक वो बीच से हटाया न जाए, और तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने मुंह की श्वास से नाश करेगा और अपने आगमन की चमक से नष्ट कर देगा। वही जिसके आने का ढंग शैतान के प्रभाव के अनुसार होगा, हर प्रकार की सामर्थ्य चिह्नों और झूठे अद्भुत कामों के साथ, और नाश होने वालों में अधर्म की हर प्रकार की धोखेबाजी के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य का प्रेम स्वीकार नहीं किया कि वे उद्धार पाए, और इसी कारण परमेश्वर उन पर प्रबल भ्रम भेजेगा कि वे झूठ पर विश्वास करें ताकि वे सब दंड पाएं जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया परंतु अधर्म में प्रसन्न रहे। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-12।
ये अंतिम दिनों के लोग शापित क्यों हैं? उन्हें प्रबल भ्रम क्यों भेजा जाता है? वे नष्ट क्यों हो जाते हैं और इस प्रकार अपनी नग्नता की लज्जा क्यों प्रकट करते हैं? ये अंश बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं करते, और अध्याय में प्रस्तुत सत्य ये पहचानता है कि बाइबल की भविष्यवाणी का चौथा राज्य मूर्ति पूजक रोम बाइबल की भविष्यवाणी के पांचवें राज्य पापसी रोम को तब तक सिंहासन पर आरूढ़ होने से रोकेगा जब तक मूर्ति पूजकता हटाई न जाए। अध्याय में जिस मूर्ति पूजक और पपाई रोम के बीच का पहचान की गई है उसी को यूहन्ना ने पर्गमुस की कलीसिया और थुहातीरा की कलीसिया के संबंध में भी दर्शाया है। पर्गमुस मूर्ति पूजक रोम के साथ मेल खाता है और थुहातीरा पपाई रोम है। पौलुस और यूहन्ना दोनों शक्तियों के संबंध के दो साक्षी प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा ही दानियेल की पुस्तक भी करती है। दानियेल की पुस्तक में मूर्ति पूजक रोम और पापल रोम के संबंध को बार बार प्रस्तुत किया गया है। दानियेल अध्याय 2 में इसे लोहे और कीचड़ युक्त मिट्टी के मिश्रण द्वारा दर्शाया गया है। दानियेल अध्याय 7 में मूर्ति पूजक और पापल रोम दोनों को भिन्न राज्य बताया गया है, और यद्यपि अध्याय 2 इन दोनों शक्तियों को एक मिश्रण के रूप में दिखाता है, अध्याय 7 ये स्पष्ट करता है कि पापल सत्ता मूर्ति पूजक रोम के 10 सींगों वाले राज्य से निकलती है। दानियेल अध्याय 8 में पद 9-12 तक का छोटा सींग रोम ही है अपने दोनों चरणों में। पद 9 और 11 में छोटा सींग पुल्लिंग रूप में है जिससे मूर्ति पूजक रोम की पहचान होती है, और पद 10 व 12 में छोटा सींग स्त्रीलिन रूप में है, जिससे पापल रोम की पहचान होती है।
दानियेल अध्याय 8 पद 13 में मूर्ति पूजक रोम और पापल रोम को दो उजाड़ने वाली शक्तियों के रूप में दर्शाया गया है। मूर्ति पूजक रोम नित्य उजाड़ने वाली शक्ति है और पापल रोम अधर्म की उजाड़ने वाली शक्ति है। अध्याय 11 पद 31 में मूर्ति पूजक रोम की नित्य उजाड़ने वाली शक्ति घृणित उजाड़ने वाली शक्ति को स्थापित करती है, जो पापल शक्ति है। अध्याय 12 पद 11 में मूर्ति पूजक रोम की नित्य उजाड़ने वाली शक्ति को पापा सत्ता की घृणित उजाड़ने वाली शक्ति को स्थापित करने के लिए हटा दिया जाता है।
रोम की दो उजाड़ करने वाली शक्तियों का संबंध दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों का एक प्रमुख विषय है, और इसी संबंध को पौलुस उस सत्य के रूप में चिन्हित करता है, जिसे यदि कोई व्यक्ति झूठ पर विश्वास से उत्पन्न होने वाले प्रबल भ्रम से बचना चाहता है तो प्रेम करना आवश्यक है। परमेश्वर कभी व्यर्थ अपने आप को नहीं दोहराते, और मूर्ति बजक रोम तथा पापाई रोम के संबंध का प्रत्येक चित्रण इस विषय पर अपनी विशेष गवाही देता है। परंतु अंतिम दिनों में रोम के प्रति को अस्वीकार करना, बाद की वर्षा को अस्वीकार करना और उसके स्थान पर प्रबल भ्रम को ग्रहण करना है, ये सदा के लिए नग्न लौदीकियाई के रूप में पहचाना जाना है।
लौदीकियाई एडवेंटिस्ट इतिहासकार, यद्यपि वे विलियम मिलर की भूमिका और कार्य के प्रति कोई पवित्र सम्मान नहीं दिखाते, ये तो स्वीकार करते हैं कि मूर्ति पूजक रोम और पोप तंत्री रोम के पारस्परिक संबंध की उनकी पहचान ही वो भविष्य सूचक ढांचा था, जिस पर उन्होंने अपने सभी भविष्य सूचक अनुप्रयोगों का निर्माण किया। गैब्रियल और अन्य स्वर्गदूतों ने मिलर को मूर्ति पूजक और पोपतंत्रीय रोम के संबंध को समझने में मार्गदर्शन किया, पर अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में उन्होंने रोम को अजगर पशु और झूठे नबी से बनी त्रिखंडीय सत्ता के रूप में नहीं देखा। उनके समय में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी झूठे नबी की भूमिका शुरू नहीं की थी, क्योंकि संयुक्त राज्य के प्रोटेस्टेंट 1847 तक रोम की बेटियां नहीं बने थे, और मिलर का आधारभूत कार्य तो पहले ही 1840 थाइली के चार्ट पर प्रदर्शित किया जा चुका था, जो मई 1842 में तैयार किया गया था।
1985 में दानियेल के 11वें अध्याय के अंतिम 6 पदों की मुहर खोली गई, और उस समयावधि के दूत ने पहचाना कि तीन शक्तियां थीं जिनकी भविष्यवाणी संबंधी गतिविधियां 11वें अध्याय के पद 40 से 45 तक चलती हैं। पद 40 में दक्षिण का राजा अजगर की शक्ति है और उत्तर का राजा पाप सत्ता है, जिसे इसी पद की शुरुआत में 1798 में नेपोलियनकालीन फ्रांस की अजगरी शक्ति के हाथों घातक घाव लगा था। उसी पद में पाप सत्ता अपने घातक घाव को भरने का कार्य आरंभ करती है। 1985 नाम का राजा सोवियत संघ की अजगरी शक्ति के विरुद्ध पलटवार करता है, जो तब दक्षिण का राजा बन चुका था। जब कैथोलिकवाद का पशु सोवियत संघ के विरुद्ध पलटवार करता है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सेना के साथ आता है, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 का झूठा भविष्यद्वक्ता है। दक्षिण का अजगरी राजा, उत्तर का पशु राजा और रथों घुड़सवारों और जहाजों वाला झूठा भविष्यद्वक्ता, इन सब का चित्रण पद 40 में किया गया है, और भविष्यवाणी की ये रेखा पद 45 पर समाप्त होती है, जब पाप सत्ता अपने अंत पर आ जाती है और सहायता करने वाला कोई नहीं होता।
प्रकाशित वाक्य 16 में आर्मगेडन एक प्रतीकात्मक भौगोलिक क्षेत्र है, जो मसीह की वापसी से पहले होने वाले मानव जाति के विद्रोह की पहचान करता है। आर्मगेडन एक प्रतीक है। ये शब्द दो शब्दों से बना है, हार जिसका अर्थ पहाड़ है, और मेगिडो जो इज़राइल की घाटी है। ये तथ्य कि जॉन ने एक पहाड़ को मेगिडो के साथ जोड़ा, जबकि मेगिडो एक घाटी है, भविष्यवाणी के छात्र को यह बताता है कि आर्मगेडन एक प्रतीक है जिसमें भौगोलिक संदर्भ निहित है, क्योंकि इज़राइल की घाटी में कोई पहाड़ नहीं है।
इज़राइल घाटी तीन समुद्रों, भूमध्य सागर, गलील का सागर और मृत सागर तथा यरूराष्ट्र शलेम के बीच स्थित है। ये उत्तरी इसराइल में अपेक्षाकृत केंद्रीय स्थान पर है, और ये तीनों जल निकाय तथा यरूशलेम इसके चारों ओर विभिन्न दिशाओं में स्थित हैं। दानियेल 11 का पद 45 वो पद है जहां उत्तर का राजा बिना किसी सहायक के अपने अंत को प्राप्त करता है, और उस पद में उसके भौगोलिक अंत को समुद्रों और यरूशलेम के महिमामय पवित्र पर्वत के बीच बताया गया है। दानियल 11 का पद 40 उन तीन शक्तियों का परिचय देता है जो पापतव की शक्ति के घातक घाव के चंगे होने और उसकी अंतिम परिणति से संबंधित है। श्लोकों का पहला वाक्य 6:17 में अंत का समय चिन्हित करता है जब पोपाई सत्ता को उसका घातक घाव लगा, और 45वां श्लोक उसके स्थायी घातक घाव की पहचान करता है। पोपाई सत्ता की पहली और अंतिम मृत्यु के बीच का भविष्य सूचक इतिहास मनुष्य जाति के विद्रोह की पहचान करता है, क्योंकि वे पोपाई सत्ता का वर्चस्व पुनर्स्थापित करते हैं जब उसका घातक घाव भर जाता है उसकी अंतिम समाप्ति से पूर्व। ये 6 श्लोक सत्य की मुहर धारण करते हैं, क्योंकि प्रारंभ और अंत दोनों ही पोपाई सत्ता की मृत्यु हैत और बीच के श्लोक मनुष्य जाति के विद्रोह को दर्शाते हैं जब पहला घातक घाव भर जाता है। मिलर को मूर्ति पूज कर पापल रोम के संबंध के विषय में स्वर्गदूतों से प्रकाश दिया गया। भविष्यवाणी के प्रतिरूप को समझने की कुंजी, जिसे मिलर ने अपनी सभी भविष्यवाणी संबंधी अनुप्रयोगों में अपनाया, थिसलुनीकियों की दूसरी पत्री में दैनिक थी। उस अध्याय में दैनिक से आशय मूर्ति पूजक रोम है, और उसी ने वो दर्शन स्थापित किया जिसे विलियम मिलर ने समझा, क्योंकि अध्याय 11 की 14वीं आयत में 13 लोगों के लुटेरे के रूप में उल्लिखित रोम ही उस दर्शन को स्थापित करता है। 1985 में ज्ञान की वृद्धि को समझने के लिए उठाया गया दूत ने रोम के त्रिविध स्वरूप को समझ लिया। मिलर पहले और दूसरे स्वर्गदूतों का संदेश वाहक था, और उसने वो दर्शन स्थापित करने के लिए रोम के प्रथम और द्वितीय रूपों को समझा जिसे उसने संसार के सामने प्रस्तुत किया। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश वाहक ने संसार में घोषित करने के लिए उसे दिया गया दर्शन स्थापित करने हेतु रोम के तीनों रूपों को समझ लिया। रोम की पहली अभिव्यक्ति मूर्ति पूजक रोम थी। मूर्ति पूजक रोम से दूसरी अभिव्यक्ति पापाई रोम उत्पन्न हुई। इन पहली दो अभिव्यक्तियों से आधुनिक रोम प्रकट हुआ, जो अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का तिहरा गठबंधन है। हम अगले लेख में एडवेंट इतिहास में द डेली को लेकर विवाद की कड़ी आगे बढ़ाएंगे।
जो ऊपरी सतह से परे देखता है, जो सब मनुष्यों के हृदयों को पढ़ता है, वो उन लोगों के विषय में जिन्हें महान ज्योति मिली है ये कहता है, वे अपनी नैतिक और आत्मिक दशा के कारण व्याकुल और विस्मित नहीं होते। हाँ, उन्होंने अपने ही मार्ग चुने हैं, और उनकी आत्मा उनकी घृणित बातों में प्रसन्न होती है। मैं भी उनके भ्रमों को चुनूंगा और उन पर उनके भय ले आऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने उत्तर न दिया, जब मैंने कहा उन्होंने नहीं सुना। परंतु उन्होंने मेरी आंखों के सामने बुरा किया और वही चुना जिसमें मुझे प्रसन्नता न थी। परमेश्वर उन्हें ऐसा प्रबल भ्रम भेजेगा कि वे झूठ पर विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं रखा कि वे उद्धार पाएं, परंतु अधर्म में सुख पाया। यशाया 66:3-4-2 थिसालुनीकियों 2:11-10-12। स्वर्गीय शिक्षक ने पूछा, मन को छलने वाला इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है कि आप ये दिखावा करें कि आप सही नींव पर निर्माण कर रहे हैं और कि परमेश्वर आपके कार्यों को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में आप सांसारिक नीति के अनुसार बहुत से कार्य कर रहे हैं और यहोवा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। ओह, ये एक बड़ा छल, एक मोहक भ्रम है जो मनों पर अधिकार कर लेता है, जब वे लोग जिन्होंने कभी सत्य जाना है भक्तिभाव का रूप ही उसकी आत्मा और सामर्थ्य समझ बैठते हैं, जब वे ये मानते हैं कि वे धनी हैं, संपत्तियों में बढ़े हुए हैं और उन्हें किसी बात की कमी नहीं, जबकि वास्तव में उन्हें हर चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने विश्व सायोग्य सेवकों के प्रति, जो अपने वस्त्रों को निष्कलंक बनाए रखते हैं, नहीं बदले हैं। परंतु बहुत से लोग शांति और सुरक्षा पुकार रहे हैं, जबकि उन पर अचानक विनाश आ रहा है। यदि पूर्ण पश्चाताप न हो, यदि लोग स्वीकारोक्ति के द्वारा अपने हृदयों को नम्र न करें और जैसा सत्य यीशु में है वैसा ही उसे ग्रहण न करें, तो वे कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जब हमारे बीच शुद्धिकरण होगा, तब हम निश्चिंत होकर ये घमंड करते हुए नहीं बैठेंगे कि हम धनी हैं और भौतिक वस्तुओं में समृद्ध हो गए हैं, हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं।
कौन सच्चाई से कह सकता है, हमारा सोना आग में परखा गया है, हमारे वस्त्र संसार से मलिन नहीं हुए हैं। मैंने हमारे शिक्षक को
तथाकथित धार्मिकता के वस्त्रों की ओर संकेत करते देखा। उन्हें उतारकर उसने नीचे की अशुद्धता को उजागर कर दिया। फिर उसने मुझसे कहा, क्या तुम नहीं देखते कि उन्होंने दंभपूर्वक अपनी अशुद्धता और चरित्र की सड़ांध को कैसे ढंग रखा है? विश्वासी नगरी कैसी वेश्या बन गई? मेरे पिता का घर व्यापार का घर बना दिया गया है, ऐसा स्थान जहां से दैवी उपस्थिति और महिमा चली गई हैं। इसी कारण निर्बलता है और सामर्थ्य का अभाव है। टेस्टिमोनीज खंड 8, 239, 215।